जो भी थोड़ा पीछे बैठे हैं और नीचे बैठ सकते हैं वो आगे आ जाए, क्योंकि हमारे आदरणीय गोपेदी जी का क्लास बहुत सुंदर होता है। थोड़ा नींद का भी मौसम है, अभी दोपहर के टाइम है, आप आगे आके बैठेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ओम शांति। आज हमारे बीच में ज्ञान पुष्प और शक्तियों की वर्षा करने पधारे हैं आदरणीय राजयोगिनी गोपी दीदी जी। एक हाथ की ताली से दीदी का हार्दिक स्वागत, सत्कार और अभिनंदन करते हैं। आप अफ्रीका की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रत्न हैं। आपका परिवार सन 1977 से ही ईश्वरीय ज्ञान से जुटा हुआ है। आप परिवार सहित अफ्रीका के बाद लंदन गए। लौकिक अलौकिक दोनों पढ़ाई पढ़ते हुए आप बड़े हुए। 40 से भी अधिक वर्षों से आप राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं और 30 से भी अधिक वर्षों से आप बाबा के घर में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपको लंदन में रहते हुए दादी जानकी जी के सानिध्य में लंबे समय रहते हुए उनकी पालना और प्रशिक्षण का महान सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लंदन और आसपास की सेवाओं के विस्तार में आपने अपनी अथक और महत्वपूर्ण सेवाएं दी है। 25 से भी अधिक वर्षों से आप इंटरनेशनल यूथ फोरम से जुड़े हुए हो। युवा जीवन में अध्यात्म की क्या अहमियत है, इस सिद्धांत को अपने अनेक युवाओं को समझाया है और न केवल समझाया है लेकिन खुद एक मिसाल बनकर दिखाया है। पूरे देश और विश्व भर में आप ट्रैवलिंग करते रहते हैं। आप एक इंटरनेशनल स्पीकर है, स्पिरिचुअल टीचर है। आप बाहर देश विदेश में सरकारी प्लेटफॉर्म, मंत्रालय, व्यवसायों, संगठन में, चाहे वह सोशल हो या गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट, सब जगह पर आप जाकर स्पिरिचुअल सेमिनार कंडक्ट करते हैं और आप अनेक सेमिनारों में आपको आमंत्रित किया जाता है। ऐसा बहुत ही प्रतिभावना और ऊर्जावान व्यक्तित्व आज हमारे बीच में है। आप हमारे आगे स्पष्ट करेंगे मनसा द्वारा सकास कैसे दे। आदरणीय गोपी दीदी जी,
ओम शांति। अच्छा, पहले पहले आप हमको बताइए कि इस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट क्या है। आपका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है इस टॉपिक में? क्या ऐसे ही बाबा कह रहे हैं इसलिए थोड़ा सुन लेवे ना क्लास को? क्यों जरूरी है ये टॉपिक? समय प्रमाण बाबा से शक्तियां लेकर के विश्व में ट्रांसफर करनी है, फैलानी है। और क्या? हाँ, विश्व के कल्याणकारी आत्माएं हैं। तो विश्व के कल्याण कैसे किया जाए, साकाश देने की एक विधि समझे। और आने वाले समय में मनसा सेवा से ही ज्यादा महत्व है। और क्या? और प्रगति की सेवा फास्ट स्पीड से हो। वाचा को थोड़े लोग तक पहुंचता है लेकिन मनसा वाइब्रेशन बेहद में फैलता है। और आत्मा शक्तिहीन है तो वाइब्रेशन से शक्तिशाली भी बनते हैं। क्या? कमजोर आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। तो आप सभी ये बात तो डेफिनेटली मानते हो ना कि बाबा से साकाश लेना और साकाश देना बहुत जरूरी है वर्तमान समय अनुसार। हमारी पालना किस आधार से होती है? देखो ना, बाबा हमारे लिए कितने अच्छे अच्छे सोच करते हैं तो वो हमको प्यार की महसूसता होती है ना कि बाबा हमको प्यार कर रहा है। आपको अपनी माँ बाप का प्यार का महसूस था क्योंकि अपने माँ बाप आपके लिए अच्छे विचार करते हैं, अच्छी फीलिंग्स भेजते हैं आपको। वाइब्रेशन से ही आपको पालना मिलती है ना। भल वो आप बोलो या ना बोलो, फोन से मुलाकात हो या ना हो, लेकिन उनकी गुड विशेष तो अवश्य पहुंचती है ना आपको, है ना? तो हमारे पूरा संसार इस आधार से ही चल रहा है। जितना हम औरों के लिए गुड विशेस रखते हैं उतना तक उनको पहुंचता है और फिर वो दूसरे के लिए करेंगे तो एक साइकिल बन जाती है गुड विशेस की। अभी जो साकाश देने की बात है ना, ये तो एक याद का फायदा है। याद से अनेक फायदे होते हैं। क्या फायदे होते हैं याद से? विकर्म विनाश होते हैं। पर्सनल बताओ, ऐसे नहीं कि बाबा ने जो बताया वो बताओ। स्मृति श्रेष्ठ होती है और क्या? अच्छा, टेंशन फ्री हो जाते हैं। अच्छा, हल्कापन महसूस होता है और क्या? व्यर्थ संकल्प दूर रहते हैं ना याद से। अच्छा भाई, लोगों का व्यर्थ संकल्प दूर नहीं रहता है क्या? कोई जवाब नहीं दे रहे हैं? हाँ हाँ, फायदे क्या है बताइए भाई लोग। क्या बोला? एनर्जी मिलती है। हाँ, शक्ति प्राप्त होती है ना, बल मिलता है ना, और क्या मिलता है आपको? वेरी बेसिक थिंग आपको मिलता है याद से, शांति मिलती है। और अरे, किसी को ये चीज नहीं मिल रही है क्या? प्रेम मिलता है ना, पहले तो स्नेह मिलता है ना। जब बच्चा बाप को याद करता है तो स्नेह प्राप्त होता है ना, करेक्ट? तो सबसे बड़ा फायदा है कि ईश्वरीय स्नेह हमको मिल रहा है। ये बहुत बड़ी चीज है, पता है ना, कि ईश्वर की दृष्टि हमारे पर पड़ी है और वो स्नेह हमको मिल रहा है। फिर जैसे आपने कहा, शक्ति, एनर्जी, बल, इसमें फिर आपको सकाश भी मिलती है। कुछ विघ्न को पार करना है, कुछ ऐसा टेस्ट पेपर आता है तो आप देखेंगे अमृत वेले के समय ज्यादा एक्स्ट्रा लाइट माइट का करंट बाबा देते हैं। और आप सोचते हैं, बाबा आज मुझे क्यों इतना सकाश दे रहे हैं, क्यों इतना जैसे लाइट माइट की करंट मिल रहे हैं? फिर दिन में एक टेस्ट पेपर आएगा, कोई विघ्न आएगा। तो एडवांस में हमारी याद की शक्ति वो सकाश खींचती है ताकि हम विघ्नों से पार हो जाए। और विघ्न कहां से आते हैं? कहां से आते हैं आपके विघ्न? कोई व्यक्ति से आता है क्या? श्योर कोई व्यक्ति से नहीं आता है? नहीं नहीं, बहुत ऐसे लोग हैं ना। नहीं नहीं, श्योर भाई लोग, कहां से आता है विघ्न? हाँ, अच्छा, स्व कहां, क्या स्व में, क्या कहां पे? स्व में तो बहुत कुछ चीज है क्या? हार्ट से विघ्न आता है? पेट से विघ्न आता है क्या? जीभ से विघ्न आता है क्या? कमजोरी से और अपने पुराने स्वभाव संस्कार से विघ्न आते हैं। देखो, बाबा ने बताई है बात वेरी स्पष्ट शब्दों में कि आपको सतो प्रधान से सतो रजो तमो बनना ही है, करेक्ट? पूरी दुनिया तमो प्रधान बनेगी। अभी जो चीज तमो प्रधान बन रही है, आपको ज्ञान है कि ये चीज तमो प्रधान बन रही है, तो रिएक्शन क्यों आता है? क्यों आता है रिएक्शन? क्योंकि आपके संस्कार उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ना। कुछ अंदर का देह का अहंकार है, कुछ अभिमान है, जो आप उस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ये चीज तमो प्रधान हो रही है। हम कभी कभी विदेश में कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं ना, तो बहुत बारी लोग पूछते हैं फ्यूचर क्या है, हम कैसे इस जीवन में जिए, ऐसे फ्यूचर, ऐसे दुनिया। तो हम एक उदाहरण देते हैं। देखो, समझो आप मार्केट में गए हैं सब्जी खरीदने के लिए। आप सब्जी लेके आए, फिर आपको अचानक कॉल मिला कि आपको दूसरे शहर में जाना है, आपके पेरेंट्स बीमार हैं, कुछ इमरजेंसी हुआ, तो आप वो सब्जी किचन में छोड़ के जाएंगे ना इमरजेंसी में। अभी 2 वीक के बाद आएंगे तो सब्जियां में क्या है, टमाटर है, खीरा है, वो है, तो क्या होगा? उसको खराब हो जाएगा ना, वो नेचुरल लॉ है ना। तो टमाटर खराब हो रहा है, खीरा खराब हो रहा है, तो फिर आप बैठ के हंगामा तो नहीं मचाएंगे ना कि क्यों खराब हो रहा है, अरे हे भगवान। हाँ, हाँ, जो बुद्धिमान है तो एडवांस में फ्रिज में रख कर दिए जाएंगे, फिर भी सड़ेंगे तो सही, वो तो बस थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा इसको। लेकिन कहने का भाव क्या है, हर एक चीज अपनी तमोप्रधान अवस्था में आएगी। तो जो आप स्यानी हो, सेंसिबल हो, तो क्या करेंगे, टमाटर से बीज निकाल के एक नया पौधा बीज बोएंगे ना, दूसरा झाड़ निकालेंगे, और जो चीज है उसको फिर खाद बना देंगे ना आप, ताकि वो मिट्टी में चला जाए। आजकल तो डीप फ्रीज कर लेते हैं, लेकिन कहां तक डीप फ्रीज करेंगे, देखो ना हमारे कितने हैं, कितने होशियार हैं लोग, बिल्कुल जो तमो प्रधानता है उसको रोकने की कितनी सुविधाएं निकाली है, आप सोचो, सही बात है ना। नहीं आप देखो आम का रस क्या करते हैं, एक साल भर तक फ्रिज में रखते हैं, फिर निकालो फ्रिज से 5 मिनट में खत्म। माना आप कितना भी सुविधा निकालेंगे तमो प्रधानता को रोकने के लिए, रोकने वाला नहीं है, ये लॉ है। अभी इस रियलिटी को बाबा बता रहे हैं, ठीक है भाई हम भी तमो प्रधान है ये एक्सेप्ट किया है। हाँ दुनिया तमो प्रधान है लेकिन हम नहीं, स्कूल में जाते नहीं, मंदिर में जाते हैं देवताओं के सामने क्या कर बोलते हैं, हम नीच पापी ऐसे वैसे हैं, जैसे मंदिर से बाहर गए सब कुछ उड़ गया, किसी ने आपकी इंसल्ट की, किसी ने कोई ऐसा उल्टा सुल्टा बोला, इंसल्ट महसूस हुआ क्या, मैं थोड़ी ऐसा हूं, मैं थोड़ी ऐसी हूं। तो ये जो है कि हमारा फर्ज क्या है, अभी जो चीज पुरानी है पुराने को छोड़ के नए पे जाना है ना, तो फोकस नए पे होना चाहिए ना। मैं क्यों ये बात बता रही हूं, क्योंकि साकाश लेने के लिए अपने आप को योग्य बनाना पड़ता है। अब देने की बात तो बाद में है, पहले तो आप योग्य बनो साकाश लेने के लिए, समझ में आई बात। तो एक रियलिटी में खुद को रखना है, क्योंकि आत्मा के अंदर देह का भान है, बहुत डीप है, देह का अभिमान है, देह का भान है, इसको रियलाइज कीजिए। आप भट्टी में क्यों आए हैं, बस ऐसे चलो माउंट आबू घूमने के लिए जाए, घूमने के लिए तो नहीं आए हैं ना, कुछ स्व का परिवर्तन का लक्ष्य लेकर के आए हैं ना। तो अभी जड़ से इस चीज को निकालनी है, क्योंकि ये जो अंदर देह का भान जो बैठा है ना, और देह का अभिमान बैठा है, वो बाबा से साकाश नहीं ले पा रहे हैं, और आपके वाइब्रेशन में पॉइजन पड़ा है, तो आप कौन सा साकाश देंगे, साकाश उसको साकाश कहेंगे ही नहीं ना। देखो सूर्य के किरणें कितने पावरफुल है, कुछ चीज को जला सकती है, इतने पावरफुल है, सफाई कर सकती है, सूर्य के किरणें कोई चीज को पौधा को उगा सकता है, इतना पावर है इस किरणें में, क्योंकि प्योर है ना, पावरफुल है। तो वैसे साकाश ऐसे किरणें हैं, बाबा की किरणें हैं, बहुत प्योर है, बहुत काम कर सकते हैं। भी उस किरणे को लेकर के हमको ये चीज क्या जलाना है, क्या खत्म करना है, क्या सफाई करनी है। तो पहले अपने आप को योग्य बनाओ, और पहला जो कंडीशन है साकाश प्राप्त करने के लिए, क्योंकि हमने एक बारी दादी से पूछा था, दादी साकाश की डेफिनेशन क्या है, आपके अनुभव से हमको बताइए। तो दादी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, कहती थी कि एक बहुत ही अति सूक्ष्म फीलिंग है अंदर से, कि बस मेरा कुछ नहीं है, मैं और मेरा बाबा, बीच में कुछ नहीं, सूक्ष्म में भी कुछ भी मेरापन नहीं है। क्योंकि थोड़ा सा मेरापन का पर्दा आ गया ना, तो जैसे वो जो रोशनी आ रही है ना, पर्दा है बीच में, फुल रोशनी नहीं ले पा रहे आप, सकाश नहीं प्राप्त। कहीं ना कहीं आपकी वृत्ति में अटकी हुई है बात। चाहे आप अपनी कमजोरी को मेरेपन करके, पास्ट को कुछ भूल को मेरेपन करके, कोई व्यक्ति को मेरेपन करके, लेकिन कहां पे आपने मेरापन का पर्दा बिठा दिया है? अभी ये इतनी डीप हैबिट है, आप भट्टी में आए हो ना, भट्टी में एक ही काम करना है, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा की संतान हूं, वो मेरापन का पर्दा और बातों का हटा दो। ये इतनी एक, मैं कहूंगी एक वायरस है अंदर, और हम इस वायरस से बहुत जन्मों तक जिए हैं कि हमको पता भी नहीं है कि हम रोगी हैं। अभी मैं आपसे टेस्ट लूं, मैं आपको बोलूं कि आप इस कमरे से अभी बाहर जाओ ब्रेक के लिए, ठीक है? ब्रेक तो लिया आपने, फिर वापसी ब्रेक से के बाद कहां आए आप? वापस अंदर कमरे में आए, और कमरे में कहां आए आप? कहां बैठे आप? अच्छा, अपनी सीट पे बैठे। अच्छा, सुनो ये साइकोलॉजी, आप एक घंटा बैठे और वो अपनी सीट बन गई है क्या? हां, इतने सारे पीछे खाली है, आप वहां नहीं बैठेंगे, आप वही सीट पे आकर के बैठेंगे। और लोग तो ऐसे हैं, अपना नोटबुक पेन छोड़ के जाते हैं कि कोई मेरी सीट पे ना बैठे। ना आप ये सीट लेके आए, ना लेकर के जाएंगे, ये आपकी इमानत है ही नहीं, फिर भी मेरी सीट कहां से आई, अपनी सीट कहां से आई? अभी देखो, आप वापस आएंगे और कोई बैठा होगा उस सीट पे, तो क्या सोच चलेगा? क्या सोच चलेगा? अरे भाई, मेरी सीट पे बैठ गया। अच्छा, फिर इसको दोषी बनाएंगे, ये मेरी सीट पे बैठ गया ना, प्रॉब्लम कौन है? वो है जो धोखेबाजी हो रहा है इधर, वो तो नहीं दिखाई देता है मेरेपन का, कि मैंने खुद अपने आप को धोखा दिया है, कुछ चीज जो मेरी थी नहीं उसको मेरा बना दिया मन में, और फिर उसके बाद मैं अपने आप को उलझन में लेके आ रही हूं और दूसरे को दोषी बना रही हूं। 99% आपके सारे खेल परेशानी ये डिजीज के वजह से है। मैं आपको बताऊं, मेरा है क्या? कई लोग तो देखने से ही मेरा होता है। वो बाबा मिलन के समय पे जब हम सीटिंग के लिए मदद करते थे, तो एक भाई कूद करके आए, इतने सारे सीट कूद करके आए, तो एक बहन बैठ गई वो सीट, वो कहता है नहीं 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 वो सीट मेरी है। मैंने बोला नाम तो नहीं लिखा है? नहीं नहीं, मैंने वो देखा ना। मैंने बोला देखने से आपकी सीट बन जाती है क्या? मना, मैंने देखा, मुझे वहां बैठना है। अभी और कोई आकर के बैठ गया, मेरी सीट पे बैठ गया। ये देखो, एक बहुत डीप वायरस है, ये बहुत डीप है। ये तो एक सीट की बात हो रही है, और लाइफ में अभी रियली आपको शक्तिशाली बनना है और साकाश, फुल साकाश प्राप्त करना है, इस चीज को तोड़ना पड़ेगा। जो सीट के पीछे भागने वाले हैं, वो कभी अपनी सीट पे बैठ नहीं सकते हैं, स्वमान की सीट पे नहीं बैठ सकते हैं। तो ईमानदारी माना क्या? ये एक दूसरी रिक्वायरमेंट है, साकाश लेने के लिए योग्य बनना खुद को। ईमानदारी माना ट्रस्टी, कुछ भी मेरा नहीं है। आपको ट्रस्टी होकर के रहना है, ना कि ओनर। आप इस पुरानी दुनिया में किसके मालिक हो? कुर्सी के मालिक हो? बिजनेस के मालिक हो? ये सब पुरानी चीज है। बिल्डिंग के मालिक हो? तो अपने मेरेपन को चैलेंज कीजिए अभी, क्योंकि वही चीज आपको चला रही है, तनाव में लेके आ रही है, डर में रख रही है, ज्यादा सोच में आप पढ़ते हैं, क्योंकि जो चीज मेरी होती है उसके प्रति सोच चलता है। तो रोशनी कैसे आएगा जब तक वो पर्दा है बीच में? तो फर्स्ट वेरी डीप ऑनेस्टी चाहिए बाबा के साथ, वेरी डीप ऑनेस्टी, रियली मैं क्या पकड़ के बैठी हूं या मैं क्या पकड़ के बैठा हूं। दूसरा है, कभी कभी ऑनेस्टी में हमने कभी बाबा के साथ, मैं कहती हूं दादी की लाइफ से हमने ये प्रेरणा ली है कि दादी का कुछ प्राइवेट नहीं था, सब कुछ पब्लिक था। हम दादी को पत्र भी लिखते थे ना, संडे मॉर्निंग क्लास में बता देती थी सबको हमारी प्राइवेट बातें। तो वो जो कभी कभी थोड़ा सा देहभान रहता है ना, मैंने अपनी प्राइवेट बात बताई, दादी किसी को बोले नहीं, वो भी खत्म हो जाता था। दादी के लिए अपना जो बाबा के साथ संबंध था वो पब्लिक था। अभी आपका जो बाबा के साथ संबंध है वो पब्लिक कर सकते हैं आप? पब्लिक है या कुछ अभी भी छिपाया है बाबा से? तो फुल ट्रांसपेरेंसी चाहिए, ये भी एक दूसरा एस्पेक्ट है सच्चाई का। कुछ भी छोटी मोटी बातें छिपा कर छिपाओ नहीं ईश्वर से, ईश्वर को पता है, उसने तो हमको चुना ना, हमें जय हूं जो हूं जैसी हूं वैसे ही मुझे चुना ना। उसको कोई देवता चाहिए तो सत्युग में जाके कोई किसी को उठाता। तो अंदर से जो भी बात अभी भी रही हुई है, जो छिपी हुई है, उसको ईश्वर के सामने प्रत्यक्ष करना है, फुल ट्रांसपेरेंसी। इसीलिए यहां पे भट्टी में आते हैं तो आपको बताया जाता है लिखो, बाबा को सब कुछ बता दो। और उस दिन भी वरदान में आया था ना, एक दिन की बात दूसरे दिन नहीं जानी चाहिए, उसी दिन खत्म करो, चिट लिख करके चित को साफ करो, लेकिन वो व्यर्थ उसी दिन समाप्त करो। फिर एक दूसरी बात आती है कि सूक्ष्म में कहीं ना कहीं जगह पे हमारे जीवन में कुछ अहंकार है, ये भी एक दूसरा पर्दा है साकाश लेने के लिए। कभी कभी ये महसूस करते हैं कि मैं तो इससे ज्यादा, मैं तो बहुत अच्छा करती हूं, मुझे क्यों नहीं पूछा गया, इसको पूछा गया, मुझे क्यों नहीं चांस दिया गया। एक बारी दादी ने कहानी बताई थी कि मधुबन में थे दादी जानकी, तो बड़ी दीदी जो मनमोहिनी दीदी है वो बाबा के पर्सनल असिस्टेंट थे, तो बड़ी दीदी तो ऑलवेज बाजू में बैठते थे और नोट्स लेते थे, जो श्रीमत बाबा देते थे, साकार बाबा देते थे, दीदी नोट्स लेती थी। तो एक दिन क्या हुआ, बाबा ने दीदी को सेवा के लिए बॉम्बे भेजा, तो दादी जानकी में ये सोच चला शायद बाबा मुझे बिठाएगा। और बाबा ने क्या किया, एक 12 साल की कुमारी को रखा। तो दादी को थोड़ा सोच लगा, अरे ये 12 साल की कुमारी है, उसको क्या पता बाबा की श्रीमत क्या, सोच तो चला ना, ये देखो सूक्ष्म में अहंकार कैसे काम करता है। फिर वो सोच लगा, फिर ऐसे बाबा को इशारा दिया, बाबा आपकी श्रीमत तो इतनी श्रेष्ठ है क्या समझेंगे। बाबा ने इतनी आंख दिखाई दादी को, बोला तेरा क्या जाता है, मैं कल 3 साल की कुमारी को बिठाऊ तेरा क्या जाता है, समझ में आई बात? अहंकार को तोड़ना पड़ता है. अहंकार आपको जज बना देता है, औरों का जज बना देता है. अहंकार आपको एक पुलिसमैन बना देता है, हाँ, और अपने लिए वकील बना देता है. इस चीज को तोड़ना बहुत जरूरी. यज्ञ किसका है? ऊपर वाले का है. वही एक एक आत्माओं को लेके आए. बीच में आपका जजमेंट की क्या जरूरत है? उसको पता है क्या करना है. उसका काम है सत्युग लेने के लिए. आप कौन हो बीच में? तो बुद्धि का जो अहंकार है इतना जबरदस्त है, आपको दिखाई नहीं देता है. और कौन से अहंकार के सीट पे बैठे हैं हम? मैं कहती हूं दो शब्दों का है. एक है मैं राइट हूं, है ना? मैं राइट हूं ना, ये मेरी बात क्यों नहीं मानता है? मैं राइट हूं ना. अभी आप उस सीट पे बैठेंगे, ये स्वमान की सीट नहीं है, अहंकार की सीट है. मैं राइट हूं. अभी आप जब उस सीट पे बैठे हो तो आपको क्या दिखाई देगा? सब कुछ रॉन्ग दिखाई देगा. ये ठीक नहीं कर रहा है, ये ठीक नहीं कर रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए. और उस समय आप ये नहीं देखते हैं कि मैं कौन सी सीट पे बैठी हूं. तो एक है मैं राइट हूं, दूसरी सीट मैं जानती हूं, मैं जानता हूं, मैं सब कुछ जानती हूं. क्या जानते हो? ईश्वर का तो ज्ञान है, बुद्धिमानों का बुद्धि वो है. अरे भाई, थोड़ी सीखने की भावना तो रखो. जिसमें बुद्धि का ज्यादा अहंकार होता है उनको सीखने की भावना नहीं रहती, क्योंकि वो खुद समझता है मैं राइट हूं, मैं सब कुछ जानता हूं. डूबेगा, धक्का लगेगा, क्योंकि उसको उस सीट से पुरानी दुनिया ही दिखाई देंगी. राइट? अभी एक आंख में बाबा होता है, एक आंख में पुरानी दुनिया होती है, तो आपकी हालत कैसे होंगी? पुरानी दुनिया के टेंशन में रहेंगे और बाबा बाबा करते रहेंगे, लेकिन अंदर तनाव ही तनाव रहेगा. हमारी दृष्टिकोण को परिवर्तन करने के लिए एक आंख में बाबा, एक आंख में अपना लक्ष्य होना चाहिए. जब लक्ष्य रहता है तभी आप अहंकार की सीट में नहीं बैठेंगे, क्योंकि आप देखो वो देवी देवता लक्ष्मी नारायण कितने ऊंच श्रेष्ठ है. और अब आप अभी इस सिचुएशन में काई का अहंकार है. जब लक्ष्य गायब होता है तब अहंकार से काम लेते हैं. तो एक आंख में जब हमारा लक्ष्य होता है तभी पूरी चीजें को रिफ्रेम कर देते हैं. अरे थैंक यू भाई, आप मुझे लक्षण दिलाने के लिए निमित्त बने हो. पर कोई भी कुछ भी करे, कोई भी समस्या हो. नहीं, एक बारी दादी के सामने एक घटना आई थी. कोई व्यक्ति बहुत सीधे शब्दों में दादी को रिजेक्ट कर रहे थे. दादी शांत हो गई थी. हम बोलने की कोशिश कर रहे थे, दादी ने हमको रोक लिया. तो फिर बाद में हमने बोला, दादी आपने कुछ बोला क्यों नहीं? हम भी बोल रहे थे ना, ये ठीक नहीं था जो इसने बोला. कहती है दादी अपनी शक्तियों का चेकिंग कर रही थी. समझ में आई बात? जो जिसका लक्ष्य सामने है, पूरी शक्ति की आर्मी सामने खड़ी होती है. आर्मर वो है ना, कवच तो वो है ना हमारी. लेकिन आप अहंकार के सीट पे बैठेंगे तो आप इंसल्ट डेफिनेटली महसूस करेंगे. तो अहंकार. और तीसरी ये बात है अपमान. अपमान महसूस करना भी एक बहुत बड़ा पर्दा है जो फिर हम साकाश नहीं ले पाते हैं. देखो मेरापन जो है ना, अपमान है तो चलो, बहुत लोग जब भी वो बोलते हैं वो अपने स्वभाव संस्कार से ही बोलते हैं ना, जितनी उनकी नॉलेज है वहां तक ही बोलेंगे ना, जितना उनका समझ है वहां तक ही बोलेंगे ना, लेकिन लेने का काम किसका है? मैं थोड़ी डस्टबिन हूं जो जैसा बोले वैसा बोले बस मैं उसको स्वीकार करूं, समझ में आई बात? तो ये भी अपमान में रहना एक बड़ी बीमारी है। अभी आप आए हो अपने को ये रोग निकालने के लिए, समझ में है ना बात? तब ऑटोमेटिकली जैसे आपके थ्रू लाइट रोशनी दिखाई देंगी, क्योंकि पर्दा हट गया ना। अभी आप एक सेकंड के लिए सोचिए, आपके लाइफ में ऐसी घड़ी के लिए सोचो जो जहां पे किसी ने आपका इंसल्ट या कोई क्रिटिसाइज किया होगा, कुछ ऐसे उल्टे सुल्टे शब्द बोले होंगे और आपको हर्ट हुआ, वो घड़ी याद करो एक मिनट के लिए। अभी उसी आत्मा को आह्वान करो मन में, उसको दृष्टि दो, उसका नाम रूप मिट जाता है और केवल आत्मा रहती है। अभी वो आत्मा को शिव बाबा की गोद में समर्पित कर दो। और जो भी अपमान की फीलिंग है वो भी आप बाबा को दे दो, ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ये मेरा नहीं है। तो इसलिए आप आए हो सफाई के लिए, सफाई के लिए आए हो, अपने आप को निरोगी बनाने के लिए आए हो। मेरापन ऐसी चीज है आपको झूठा बना देती है, सच में मैं आपको बताऊं, आप सही रूप से डायरेक्शन भी नहीं ले पाएंगे बाबा से, क्योंकि जहां मेरा होता है वहां पे आप श्रीमद को एडजस्ट करेंगे मेरेपन के कारण। जो ट्रस्टी होता है वो हर बात में पूछता है इसमें क्या किया जाए, इसको कैसे किया जाए। हमने अभी बॉम्ब कहाँ गई थी, मैं दिल्ली गई थी तो एक सेंटर पे गई थी, तो हमने सभी क्लास के भाई बहनों को उठाया था, हमने बोला आप पीछे जाओ, आप चलो, आप बहुत समय से बैठे हो, आप खड़े होकर के पीछे जाओ, पीछे बहुत सारी जगह थी, तो सब पीछे खड़े हुए। तो मैंने एक भाई को बोला थोड़ा एक्सरसाइज कराओ 2-3 मिनट का, तो मैं इंस्ट्रक्शन देती रही, मैंने बोला हम यहां से डायरेक्शन देंगे आपको केवल फॉलो करना है। सभी ने बोला हाँ ठीक है, तो सभी उठे गए पीछे, एक्सरसाइज किया, फिर मैंने लास्ट में यही डायरेक्शन दिया अभी बैठ जाओ। तो क्या किया इन्होंने, सभी अपने सीट आगे आकर के बैठ गए, मैंने बोला सभी फेल। किसी ने पूछा मुझे कहां बैठना है, इधर बैठना है या वहां बैठना है, जो ट्रस्टी होता वो पूछता, लेकिन जो आपका मेरापन ऑलरेडी बन चुका है ना, अच्छा बेंजी ने बोला बैठ जाओ, तो जहां पे मेरापन है वहां पे मैं जाके बैठूंगी, समझ में आई बात? इतना हम एडजस्ट करते हैं कई बातों का। तो हम कहेंगे बाबा साकाश दे रहा है, वो तो अनेक आत्माओं तक पहुंचेगा, लेकिन हम कहां तक एक योग्य बने हैं उसको प्राप्त करने के लिए, और जैसे एक रूटर पावर बैंक औरों के लिए कहां तक बने हैं, क्योंकि शक्ति जमा करनी है ना, देखो कोई वाईफाई रूटर है तो उसके जो सिग्नल्स बहुत दूरी से स्प्रेड होना है तो कहां लगाना होता है इसको? ऊंचाई में लगाना पड़ता है ना, जितना ऊंचा होता है उतना बहुत ज्यादा एरिया कवर करता है ना। तो आपको साकाश देने के लिए आपको ऊपर रहना पड़ेगा। माना बुद्धि का पांव मिट्टी में नहीं घूमना चाहिए। अभी तो इधर उधर डिस्ट्रैक्ट एंगेज, क्या साकाश देने के लायक हुआ मुझे बताओ? बुद्धि तो मिट्टी में फंसी हुई है। तो पहले चाहिए ऊपर रहना है, एक ऐसी अवस्था मन को बुद्धि को संभालो ताकि मिट्टी में ना आओ। दूसरी बात, ऊपर रहने के लिए अपने आप को लाइट रखना है, हाइट में रहना है और लाइट रहना है, क्योंकि जो चीज लाइट रहती है वो ही हाइट पे रह सकती है। तो कोई भी सूक्ष्म में छोटी मोटी बातें हैं, छोड़ो अभी छोड़ो, पुरानी बात है ना, पुरानी है, पूरा हो गई, पुरानी पुरानी पुरानी, समाप्ति समाप्ति समाप्ति, क्योंकि भाई बहने ये लास्ट है। अभी यहां से कोई भी कर्म का हिसाब किताब ओवर नहीं जाएगा, चुकतु यहां ही करना है, इस जन्म में ही करना है। चाहे आप अपनी इच्छा से करो, चाहे ड्रामा आपसे कराती है, लेकिन चुकतु करना ही है। अभी आपकी चॉइस है। ठीक है, समझ में आई बात? क्योंकि हम बहुत ज्यादा बातें करेंगे ना साकाश देने की, ये इमेजिनेशन, कभी कभी कल्पनाएं की बात होती है, ये योग नहीं होता है। बस हम यहां बैठे हैं, हम खुद को विजुलाइज कर रहे हैं, हम इस छत से ऊपर जा रहे हैं, एक दूसरे संसार में जा रहे हैं, बस ये तो एक मूवी बन गई दिमाग में, इमेजिनेशन हुआ। और फिर जैसे मूवी बंद हो जाती है, बिल्कुल ग्राउंड जीरो में आ जाते हैं, संस्कार परिवर्तन तो नहीं हुआ। तो अंदर से जब वो लक्ष्य रखते हैं ना कि मुझे अपने आप को साफ करना है, श्रेष्ठ बनाना है, साफ करना है, श्रेष्ठ बनाना है, साफ करना है, श्रेष्ठ बनाना है, तभी देखना कितना ड्रामा और बाबा मदद करता है। लेकिन जब हम ये लक्ष्य को छोड़ते हैं ना, तो हम साधनों में कंफर्टेबल बन जाते हैं, तो हमारा पुरुषार्थ कन्वीनियंस का पुरुषार्थ बनता है। कन्वीनियंस के पुरुषार्थ से आपको कोई प्रारब्ध मिलने वाला नहीं है। उसको हम पुरुषार्थ भी नहीं कहेंगे, उसको कंफर्ट कहेंगे। गॉडली स्टूडेंट का नशा आजकल तो जूम धाम बना है ना, सभी जुमा आराम से चाय बिठ के, चाय पी के मुरली सुनो, क्यों इतनी दिक्कत करनी है सेंटर में जाने की सभी के बीच में? नहीं 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 नहीं, आराम से घर बैठे सुनो। ठीक है, अभी वो कंफर्ट चाहिए तो आगे के भविष्य के लिए आपका कट हो रहा है, ये भी एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि कुछ पुरुषार्थ नहीं हो रहा है ना, अंदर से उमंग नहीं आ रहा है, मैं गॉडली स्टूडेंट हूं, मुझे जाके पढ़ना है, कुछ मेहनत करें, कुछ नहीं। आजकल तो देखो ना, क्विक फिक्स क्विक फिक्स। मैंने बोला कोई क्विक फिक्स का रास्ता ही नहीं है, गॉड इज ट्रूथ। आपको ट्रूथ की शक्ति चाहिए तो आपको ट्रूथफुल बनना पड़ेगा। ट्रूथफुल बनने में कोई शॉर्टकट नहीं है, हर एक बात में ट्रूथफुल बनना पड़ेगा। आपकी प्रकृति के साथ, आपके संबंध में, आपके विवेक के साथ, आपके दिल में। अब देखो ना, हमारी दादियां प्रकृति को भी चलाया, स्पेशली रतन मोहिनी दादी जी बहुत अच्छी एग्जांपल थी एक बात में। हम जब दादी के साथ टूर पे गए थे तो दादी केवल एक डेढ़ रोटी खाती थी और इतने छोटे छोटे फुलके होते थे, हम तो दो ढाई खा लेते थे। तो एक बार ही मैंने दादी को पूछा, दादी आप केवल 1.5 खाते हो, एक आधा टुकड़ा खा लो ना, छोटा सा ही टुकड़ा है। तो दादी ने बताया, नहीं, दादी को पता है इस गाड़ी को कितनी पेट्रोल चाहिए, इसको जितना चाहिए इतना ही देना है, क्योंकि आज दादी वो आधा टुकड़ा खाएंगी, वो एक्स्ट्रा डाल दिया तो पेट में नुकसान होगा, फिर वो सिर दर्द होगा, फिर दादी कैसे सेवा करेंगे। माना प्रकृति के साथ भी ईमानदारी चाहिए, तभी तो लास्ट में प्रकृति आपको सहयोग देंगी। आप अभी पानी वेस्ट करेंगे, आप बिना सोचे पानी मिल रहा है ना, बहते चलो, खुला रखो, वेस्ट करो तो लास्ट में आपको ही पानी नहीं मिलने वाला है। ये रियलिटी, कर्म लॉ है ये। जो आप ईमानदारी, वफादारी, सच्चाई से चले हैं तो आपको सब कुछ मिलेगा अंत में। तो अभी अपने आप को ऐसा पात्र बनाओ ना, और सचमुच आपको लगेगा जब आप योग में बैठते हैं ना, आपको ऐसे लगेगा कि जैसे बाबा करंट ही लाइट माई दे रहा है, आप रोशनी के छत्र छाए के नीचे बैठे हो। ओके, समझ में आई विधि क्या है साकाश प्राप्त करने के लिए? ओके, चलो, किसी का कोई प्रश्न है? टमाटर को आखिर लास्ट में टमाटर तक पहुंचे देखो ना कितनी अच्छी बेहद की बातें करते हैं, लास्ट में क्या आता है, टमाटर की बात आती है। नहीं, वेरी गुड। हाँ, उसके बीज रखो ना, जो काम की चीज है रखो, बाकी का फिर, और फेंकना भी नहीं है, आप रिसाइकल कर सकते हो, इसकी खाद अच्छी बनती है, फिर वापस आप धरती में डाल दो, कंपोस्टिंग करते हैं ना, वेस्ट टू बेस्ट बना दो ना। बुरा तो नहीं रखना है, वो तो डेफिनेटली नॉट अलाउड, ज्ञानी तो आत्मा के लिए नॉट अलाउड, पॉइजन होता है ना, तो फिर आप जो ज्ञान देते हो आप पॉइजन सहित देते हो लोगों को। जी, ये सोच आपका जो है, इनने जो प्रश्न पूछा, हम यहाँ हैं, बैटरी चार्ज होती है, अच्छा लगता है, बाहर जाते हैं फिर वो कम होता है, फिर वो क्या है, तो वहां कैसे करें, ऐसे बोला है, ये सोच ही गलत है। आप यहां बैठे हो, आप इस सोच में, माइंडसेट में बैठे हो, तो आप फुल शक्ति भी नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि आपकी रियलाइजेशन की शक्ति, मेरा घर, मेरा जॉब, मेरा, मैं वहां क्या करूं, मैं वहां क्या करूं, मैं वहां क्या करूं, वो अभी तक आपको पकड़ के बैठा है। तो आप यहां करके भी फुल प्राप्ति नहीं ले सकेंगे, क्योंकि अंदर टेंशन बढ़ा है, मेरा मेरा का मेरा का। इसलिए मैं कहती हूं, सो व्हाट, पहले यहां पे अपनी अवस्था पे काम करो, ताकि कोई भी चीज आपकी मन बुद्धि को खींचे नहीं। इसको कहेंगे सच्ची तपस्या। जब आप वो स्थिति टेस्ट करते हो ना, निडर बन जाते हैं, मैं अविनाशी आत्मा हूं, क्योंकि आप बाहर की दुनिया में जाएंगे तो आप आत्मिक शक्ति लेकर के जाएंगे ना। अभी आप ये सारी बातें सोच करके यहां बैठे हो, आप अविनाशी आत्मा का अनुभव नहीं कर पाएंगे। ये मेरापन बहुत डीप है एंजल, मेरी सिचुएशन, मेरा है, क्या है मेरा, कुछ भी नहीं है, सब कुछ मरने वाला है, कल तो आपको जॉब भी नहीं मिलेगा, पैसे भी नहीं मिलेगा, तो क्या यहां पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में सोचने के लिए? बेसिस ऑफ श्रेष्ठ कर्म है श्रेष्ठ कॉन्शियसनेस, और लास्ट में न आपका जॉब, न आपका पेपर, पैसा कुछ भी काम में नहीं आएगा। जो आपका श्रेष्ठ कर्मों का जो फल है वही आपको मिलने वाला है। तो चिंता क्या को करते हैं, मुझे श्रेष्ठ बनना है, श्रेष्ठ कर्म करना है। लेकिन हाँ, मेरे अंदर कुछ तृष्णा है तभी ऐसे सोच चलता है, इच्छा है तभी सोच चलता है, एक्सपेक्टेशन है तभी सोच चलता है। और हम कहते हैं इस चीज को तोड़ो, पहले ये माइंडसेट को तोड़ो। ये जैसे बिजनेस का माइंडसेट है, मैं यहां से शक्ति भर के फिर यहां दूंगी, यहां से शक्ति भर के, क्या है? सच्ची तपस्या क्या है? मेरा कुछ नहीं है, मैं आत्मा, अविनाशी आत्मा, परमात्मा की संतान। इस अवस्था में एक घंटा टिक करके बैठो, फिर आपको इतनी ताकत मिलेंगी, आप हजारों विघ्न पार कर सकते हैं। तो ये जो भी अंदर के जो छोटे मोटे माइंडसेट्स है ना, तोड़ो, एक एक माइंडसेट को तोड़ो, यहां बैठ के छोड़ो अभी। ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, एक सच्चे सत्य नारायण की कथा चल रही है यहां पे। नर से नारायण बन रहे हैं हम। ओके, थैंक यू, ओम शांति। चलो 2 मिनट बाबा की याद में।
तन का न गर्व की जय, ये तो विनाशी है। तू तो है चेतन आत्मा, ज्योति अविनाशी है। ज्योति सागर पिता को दिल में बसा ले, दिल में बसा ले। राहों में भर जाएंगे तेरे उजाले, तेरे उजाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। पग पग पे मिलता है प्रभु का इशारा, इसके सहारे कर दे स्वाहा तू सारा। अंबर के सारे तारे आंचल में सजा ले, आंचल में सजा ले, मन के सरोवर में तू कमल खिला ले, कमल खिला ले, जीवन की नैया कर दे।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद गोपी दीदी। एक हाथ की ताली से दीदी का पहले तो हम धन्यवाद करेंगे। दूसरी चीज सकास देने की बात जो बताई, तो आज हमें दीदी जी अपने अंदर ले गए कि जब तक खुद को राइट नहीं करेंगे तब तक हम खुद को भी बाबा से सकास नहीं दिला सकते हैं, दूसरों को सकास देने की बात तो दूर रही। तो जैसे भाई ने टमाटर बुद्धि में रखा ना, वैसे अपनी कमजोरियों के बीच को आज दिखाया गोपी दीदी ने बहुत सारी, कि कैसे खुद को हमें राइट बनाना है। इतना सूक्ष्म डीपली शायद मैंने भी पहली बार लाइव रमणीकता से क्लास सुना है ना, तो जोरदार दीदी के लिए ताली हो जाए। क्योंकि नींद की मौसम थी, दोपहर का समय माना, और आते ही दीदी ने सबको क्या कर दिया, पूरा लाइव कर दिया, और हंसाते बहलाते रमणीकता से हर बात हमारे अंदर डाल दिया। एक क्लास भी आपने ए वाला क्लास भी याद रखा ना, तो सारा साल पूरा 2026 का इसके ऊपर आप अपने आप पर मेहनत करेंगे तो मैं समझती हूँ कि हम सकास लेने के योग्य बन जाएंगे। मैं तो प्रामाणिकता से कहती हूँ कि जो चीज मुझे चाहती थी वो आज अभी के क्लास में मिल गई दीदी जी, तो मेरी तरफ से भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं बाबा से कल से बहुत बातें कर रही थी कि बाबा मुझे ऐसा कुछ दिखाओ, ऐसा समझाओ कि कुछ कहाँ न कहाँ, कहाँ से मुझे शुरुआत करनी है। शुरुआत तो हमने बहुत समय से की है, लेकिन जो अभी करनी है वो समझ नहीं पा रही थी। मैं बहुत बाबा से मंथन करती थी और किसी के साथ बातें करते करते जैसे यहाँ बैठी हूँ तो अंदर चली जाती थी और मेरे साथ ही खुद बातें करने लग जाती थी, बाबा से बातें करने लग जाती थी कि नहीं ये तेरा सोचना राइट नहीं है, मैंपन है, यहाँ ये नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो जैसे ट्रस्टी की, ऑनर और ट्रस्टी की बात बताई कि ट्रस्टी क्या करेगा, पूछ कर करेगा। तो कितनी छोटी छोटी बातें आज दीदी ने इतनी बातें रमणीकता से बताई दीदी, मैं तो बहुत दिल की दुआएं दे रही हूँ आज आपको, बहुत बाबा का ध्यान। लेकिन जो हमें चाहिए वो बाबा किसी न किसी को निमित्त बना के देता है, क्योंकि सेंटर माना बहुत कारोबार में व्यस्त हो जाते हैं, तो कहीं हमें लगता है कि मैं खुद ही समझती थी कि मैं कहीं खो गई हूँ, कोई और दुनिया में चली गई, ऐसा मुझे फील होता था। तो बाबा को कहती थी, बाबा एक एक दिन एक एक क्षण मेरी जा रही है पांडव भवन में, आप मुझे पकड़ के वापस लाओ बाबा, वापस लाओ। तो मेरी सेवा का फल आज मुझे मिल गया। ओम शांति दीदी।